अरे क्या करूं, शक्ति नहीं है, साधना करनी है, ऐसा कभी ना सोचो। साधन में श्रम की आवश्यकता नहीं है, शक्ति की जरूरत नहीं है, केवल सुकृति की जरूरत है। ध्यान से सुनना, इसी में बड़ा चक्कर पड़ जाता है। अब वो बोल रहे थे ना, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, अपने गुरुदेव की बात मानूंगा, तो इनको कहीं मानसिक रूप से किसी ने अपने मन से चलाने की कोशिश किया होगा और इन्होंने ठान लिया, तो गहरे मन में ये बात उतर गई। अब ध्यान ध्यान में वही रिपीट हो रहा है। तो साधन करने में श्रम की आवश्यकता नहीं है, शक्ति की आवश्यकता नहीं है, साधन करने में केवल सुकृति की आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है। जो लोग सुकृति नहीं लेते, जो थारी मर्जी वो मारी मर्जी, वे लोग साधन कर करके थक जाते, फिर भी जीवन में बदलाव नहीं आती। दूसरे लोग श्रम कर करके थक जाते हैं तो भी रस नहीं आता। ये भी अनुभव होता है, क्योंकि साधन करते और चाहते तुच्छ, भजन करते श्रेष्ठ का और चाहते तुच्छ, और वो हमको तुच्छ देकर फंसाना नहीं चाहता, इस बात की सुकृति नहीं है। हम अपने मन माना चाहते हैं कि ऐसा हो, जब अपने मन की ठान लेते हैं तो सब तो अपने मन की होगी नहीं, अगर व्यक्ति के मन की होने लग जाए तो संसार का सत्यानाश हो जाए, सबके मन की होने लग जाए तो संसार चलेगा ही नहीं। तो हमको सुकृति देना है, जो तेरी मर्जी सो मेरी मर्जी। साधन में श्रम नहीं, सुकृति और सावधानी। परदेश के लोग साधन भजन तो नहीं करते, लेकिन कहीं जाते अतिथि होकर तो उसका मकान गंदा न हो उसका ख्याल रखते, उसका पायखाना भी वो साफ रखते। और हम लोग साधना करने जाते हैं तो आश्रम में जहां रहेंगे, जहां पायखाने में रहेंगे, गंदा पड़े तो पड़ा, आप रुसु पथारी ली थी त्यां फेंकी ने चलती पकड़ी। तो ये जो हमारी सावधानी नहीं है, व्यवहार में जो सावधानी चाहिए वो एक प्रकार का साधन है। लोग तो धर्म की जगह पर भी अपना अहम पोषने को आ जाते हैं, तो ये असावधानी है। आश्रम में और गुरुद्वार पे अहम छोड़कर मिलजुल के काम करने की जरूरत है, लेकिन आश्रम में और गुरुद्वार में भी अपनी गंदी आदत, राग की, द्वेष की, काटा काटी की हम चलाना चाहते हैं। जो खुशामत करे वो चाहे पीतल का हो फिर भी सोने का लगेगा, और दूसरा चाहे सोने का हो फिर भी पीतल का लगेगा। तो ये हमारी सावधानी की कमी है। जय राम जी की। हम अगर सावधानी का बर्ताव करें तो हमारा साधन सहज में होगा। फिर से सुन लें, साधन करने में श्रम की जरूरत नहीं है, सुकृति की जरूरत है। ईश्वर की हां में हां, ईश्वर और गुरु के अनुभव में अपने सहमत हो जाना, बहुत श्रम बच जाता है। अभी नहीं तो हजार वर्ष के बाद भी सहमत तो होना पड़ता है, तो अभी क्यों ना हो जाए। ईश्वर की दृष्टि में अपनी दृष्टि मिला दे। ईश्वर को जैसा जगत दिखता है और स्व दिखता है, ऐसा तू अपने को, स्व को देख और जगत को देख, सुकृति दे दे, हो गया काम। तो साधना का मतलब है आपको सुकृति देने की तैयारी, ईश्वर की हां में हां, गुरु की हां में हां। साधन श्रम साध्य नहीं है, सुकृति साध्य है, और जो सुकृति दी त्यों आसानी हो जाएगी। एक बात, एक तो सुकृति, दूसरी बात है सावधानी की। सावधानी क्या करनी है कि अहंकार पोषना नहीं है, राग द्वेष पोषना नहीं है, शत्रु मित्र के भाव को पोषना नहीं है, इसको क्षीण करना है। अगर ये सावधानी नहीं रही तो मंदिर में जाने के बाद भी ऐसा है, उसका नाक ऐसा है, उसका गाल ऐसा है, उसका मुंह ऐसा है, आश्रम में जाने के बाद भी आ सारो छे ना फलाणु छे ना ढींगणु छे ना पूछड़ू छे, ये राग द्वेष की सृष्टि करेगा। अगर सेवा करना है तो तुम कहीं भी सेवा कर सकते हो। पहले के जमाने में तो सेवा करने वाले थे, सेवा लेने वाले नहीं मिलते थे भाई। क्यों किसी की सेवा लेकर सिर पे बोझ चढ़ाना, अपने से हो सके इतना अपने आप कर लेना। राजकुमार जा रहा था मेले में, रास्ते में उसका चाबुक गिर पड़ा, घोड़े पर था वो, तो वापस आया, घोड़ा खड़ा करा और फिर नीचे उतरा, चाबुक उठाया उसने। तो मेले में जाने वाले लोगों ने कहा, राजकुमार कह देते ये जरा चाबुक दे दो तो हम उठा के दे देते, तुम घोड़े से नीचे उतरे, चाबुक उठाया फिर घोड़े पर बैठे। तो उस बुद्धिमान राजकुमार ने कहा कि मैं तुम्हारी ये सेवा ले लेता तो मुझे कब अवसर मिलता ये सेवा चुकाने का, तुम कब घोड़े पे बैठते हो, तुम्हारा कब चाबुक गिरता और कब मैं उठा के तुमको बदले में देता। और मेरे शरीर में तो शक्ति है, बल है, तो मैं काहे को तुम्हारी सेवा लूं। तो सावधानी बरतनी चाहिए। हम जिनसे बात करते हैं उतनी जरूरी है क्या, जहां समय देते हैं उतना जरूरी है क्या? ऐ सावधानी, केवल सावधानी से साधन हो जाता है, केवल सुकृति से साधन हो जाता है, ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। तो शास्त्र ढंग से हमारा व्यवहार हो। सावधानी शब्द छोटा है लेकिन इसमें बहुत कुछ आ जाता है। खाने में सावधानी, बोलने में सावधानी, समय खर्चने में सावधानी, विचार करने में सावधानी है। तो दो बातें, सुकृति और सावधानी, आज उसी पे चलता है। सुकृति और सावधानी, श्रम नहीं, श्रम कितना भी करा लेकिन सुकृति और सावधानी नहीं है तो हाथ में कुछ नहीं लगेगा। मैं 40 साल से भजन करता हूं, तू 40 जन्म से कर। मैं नंगे पैर घूमता हूं, मैं फल ही फल खाता हूं, तू चाहे हवाई हवा पी, क्या फर्क पड़ता है? अगर उसकी हां में हां नहीं किया और फल खाकर अपना अहम पोषते हो, अथवा लोग फलाना फलाना करके अपना अहम पोषते हो, अथवा जो खुशामत करे वो चाहे पित्तल का हो और अच्छा लगता है, और दूसरे से जिससे गांठ बंध गई है कि इसने कहा कि तुम हमारे शत्रु हो और वो अपने मगज में है, तो उसकी हर चेष्टा अपने को ऐसी लगेगी क्योंकि एंटी ग्रुप है। ये एंटी ग्रुप राग द्वेष, ये असावधानी और असुकृति का फल है। और इसी से व्यक्ति में, कुटुंब में, समाज में, राज्य में, देश में, विश्व में अशांति की आग लगी। ये दो मूर्खताओं से, मूर्खता खाली दो है, असावधानी जिससे राग द्वेष बढ़ता है, मनुष्य मनुष्य का शत्रु होता है, गुरु भाई के शत्रु हो जाते हैं, कैसी बेवकूफी। एक पिता के पुत्र आपस में शत्रु हो जाते, कितनी नालायक। पेलो पेलानो टांटियो तान से, पेलो पेलानो टांटियो तान से, अरे कि तुम्हें कुतरा हूं हक सुकरवा छीनो, तुम अपना मनुष्य है मानुषी हक भोगो। कुत्ते एक ग्रुप के दूसरे ग्रुप को, एक एक मोहल्ले के दूसरे मोहल्लों को सारी रात भौंमों करते रहते, ये तो उनको दिया प्रकृति ने। आपन राग द्वेष करके क्यों जलसी करके एक दूसरे को सताए? परदेश में भी यही हाल है जलसी का, और अपने देश में भी बहुत आ गया। सुकृति नहीं है, ईश्वर की हां में हां नहीं है, ईश्वर के साथ प्रीति नहीं है, ईश्वर के साथ मोहब्बत नहीं है, इसीलिए राग द्वेष से पिंड चुकता नहीं है। संसार का चिंतन करोगे तो या तो राग आएगा या तो द्वेष आएगा। अपने में प्रीति करोगे तो अभिनिवेश आएगा और भगवान में प्रीति करोगे तो भगवान आएगा हृदय में। तुम जैसा चिंतन करते हो वैसा तुम्हारा हृदय हो जाता है, तुम्हारा चित्त हो जाता है। इसलिए कृपा करके भगवत चिंतन करो। सुबह उठो, मेरे हृदय में भगवान है। बाहर घूमूंगा लेकिन उसी की सत्ता से बार बार उसी में आऊंगा। श्वासोश्वास में जो अजपा गायत्री दिया है उसको जपो। नामदान के वक्त जो टेक्निक बताई, युक्ति बताई, उसका अभ्यास करो। व्यवहार के हर एक घंटे में 2-5 मिनट उसी का अभ्यास करो। कृष्ण ने कहा, अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिनी परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंतयन। अभ्यास को योग में बदल दो। चेतसा तुम्हारी अन्य गामिनी मत होने दो। अन्य अन्य व्यक्तियों में दिखेगी, अन्य अन्य व्यवहार में दिखे, लेकिन अन्य अन्य की गहराई में जो भगवान छुपा है वो अनन्य है। लट्टू अलग है, ट्यूबलाइट अलग है, पंखा अलग है, एम्पलीफायर अलग है, मोटर पंप अलग है, तो फ्रिज अलग है, लेकिन है तो सब में लाइट की सत्ता। ऐसे ही सब में मेरे, सब घट मेरा साइया। खाली घटना कोई, शत्रु के प्रति भी मेरा साइया है। ऐसा गहरा चिंतन करोगे तो शत्रु की शक्ति तुम्हें दबाएगी नहीं, तुम्हारी निष्ठा शत्रु के हृदय को बदल देगी। केवल सावधानी रखो कि आपका चित्त दूषित ना हो, आपका चित्त राग द्वेष में अभिनिवेश में न गिरे। इतनी सावधानी और उसकी हां में हां सुकृति दे दो। जैसा ईश्वर और गुरु कहते हैं उसमें, उन मैं गुरु की मानूंगा और किसी की नहीं मानूंगा। गुरु की मानना है तो देखो गुरु मनवाते हैं, गुरु की मानना है तो गुरु कहते हैं कि सुख और दुख के भोगी मत मनो, सुख के चाहक मत बनो और दुख से पलायनवादी मत करो। दुख आए तो उसको भी देखो, किस बात से आया, क्यों आया, आता है, कितना दिन टिकता है देखो। सावधान होकर दुख के दृष्टा बनोगे तो दुख तुम्हें दुख का भोगता नहीं बनाएगा। ऐसे सावधान होकर सुख को भी देखो कि आखिर कब तक है, क्या आकर्षित हुई वस्तु मिली, आखिर क्या। तो सुख सुख में आसक्ति तुम्हें दबा देती और दुख का भय भी तुम्हें दबा देता है, इससे अंतःकरण मलिन होता है। राग द्वेष से भी अंतःकरण मलिन होता है। अपनी विशेषता, अपने अधिकार, अपनी विशेषता, इससे भी अंतःकरण में परिच्छिन्नता और मलिनता होती। तो आज के सत्संग की ये 2 पॉइंट हैं, साधन श्रम साध्य नहीं, सुकृति साध्य है। तुम्हारे पास कितनी शक्ति है उसको पता है, उसके अनुसार ही तुम करो। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास है 25 वोल्ट और तुम 200 वोल्ट का बल्ब जला के दिखाओ, नहीं। तुम्हारे पास 0 वोल्ट है तो 0 भी काफी है। तुम्हारे पास जो शक्ति है, जो योग्यता, ऐसे ही साधन करो। और सावधानी रखो कि तुम्हारी शक्ति और योग्यता और जगह बिखर तो नहीं रही, फालतू बात में, फालतू खाने में, फालतू सोचने में, फालतू आकर्षणों में तुम्हारी जीवन शक्ति हरास तो नहीं हो रही, इसकी सावधानी। ये 2 बात ऐसा है कि इसको महामंत्र कह दें तो कोई आपत्ति नहीं। सुकृति और सावधानी, ये 2 बातें। सुबह उठो के आज सुकृति और सावधानी की साधना करूंगा, बस हर 1 घंटे में फिर याद करो सुकृति और सावधानी ही। 3 दिन ऐसा करके देखो, आपको 3 महीने संसार क्या मजूरी करने से जो नहीं मिला अथवा मनमाना भजन करने से जो नहीं मिला, वो 3 दिन में इन 2 पॉइंटों से मिल जाएगा। शांति, प्रसन्नता, सुकृति और सावधानी, सुकृति और सावधानी। बस रट लगा दो केवल शब्दों की रट नहीं, व्यवहार में आ जाए। तेरी हां में हां सुकृति। दुख तब होता है जब हम सुकृति नहीं, उसकी हां में हां नहीं करते। और समय अंत समय बर्बाद होता है, अंतःकरण खराब होता है जब हम असावधान रहते हैं। हम सावधान रहे और ईश्वर की सुकृति को। सुकृति श्रम साध्य नहीं है साधन, सुकृति साध्य है। बैठे हैं, विचार आ रहा है, आप चिल्लाएंगे कि विचार आ रहा है, नहीं आवे, नहीं आवे करोगे तो और आएगा। ठीक है, आ रहा है विचार, उसको मैं देख रहा हूँ, सुकृति है, विचार शांत होने लगेंगे। जयराम जी की। सड़क के किनारे तुम्हारा घर है, बैलगाड़ी नहीं आए तो झगड़ा हो जाएगा। कार भी आती है, बैलगाड़ी भी आती है, ऑटो भी आती है, तो पैदल रिक्शा भी आती है, तो धतुड़ धतुड़ धत तक धत ट्रक भी गुजरती है। गुजरती तो गुजरती, सड़क के किनारे जिनके घर है उनको हैबिट पड़ गई, गुजरती तो गुजरती। देहात में कोई गाड़ी जाती तो सब घर से बाहर आते, कौन क्या है वो। लेकिन शहरों में जो मकान है उनको कभी ऐसा नहीं होता, कौन क्या आते हैं जाते हैं। सुकृति होगी, आदत पड़ गई। ऐसे जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता की गाड़ियां आती जाती, मान अपमान का आता है जाता है। तू अपने घर में बैठ, अपने आत्मा में बैठ, ये सब आके सड़क से रवाना हो जाए। आई ऑटो तो पकड़ा उसका पहिया, आई बारात तो उसके साथ हो गए, आई निकली शमशान यात्रा तो हाय हाय रोने लग गए, तो आदमी पागल हो जाएगा। सड़क के किनारे मकान है, शमशान यात्रा वाले भी जाएंगे, बारात वाले भी जाएंगे, ऑटो वाले भी जाएंगे, पैदल रिक्शा वाले भी जाएंगे, कोई पैदल भी जाएंगे, कोई मोटे भी जाएंगे। मोटे देखकर हाय मैं मोटा हो जाऊं, पतले देखकर हाय रे इसको पतला क्यों कर रहा। ऐसा तो नहीं सोचना पड़ता है, जो है ठीक है, संसार है, रास्ता है, गुजर रहे। ऐसे तुम्हारे शरीर और मन से ये सब गुजर रहा है, गुजरने दो। Who has the sin the wind? Neither you nor I. But when the trees bow down their heads, the wind is tossing. Boy, ये बचपन में पढ़ाते थे। हवा ने किसको देख, हवा को किसने देखा, न तूने न मैंने, लेकिन जब पेड़ सिर झुकाते तो पता चलता है कि हवा पसार हो रही। ऐसे तुम्हारे चित्त में कुछ भी आए, सुकृति, चलो ठीक है। तो बाबा काम आ जाए, क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, चिंता आ जाए, उसकी सुकृति नहीं दिया इसीलिए काम आया, उसकी सुकृति उसकी हां में हां नहीं की इसीलिए क्रोध आया। काम क्रोध लोभ मोह ये मन की अपनी मान्यता से देखते हैं, अपनी मान्यता से नहीं, उसकी हां में हां कर दो, उसकी उसके साथ दृष्टि मिलाओ। सावधान रहो, काम का विचार आता है जब आदमी निकम्मा होता है, जब राम का रस नहीं होता, राम का चिंतन नहीं होता, तभी काम आता है। राम का चिंतन नहीं होता तभी क्रोध आता है, राम की दृष्टि नहीं है, सावधानी नहीं है, तभी मोह होता है। पुत्र में मोह होगा, पत्नी में मोह होगा, परिवार में मोह होगा तो होने दे। सावधानी, पुत्र के रूप में पिया को देखो, पत्नी के रूप में उसके पिया, उसमें पिया छुपा है, पति के रूप में वो बैठा, ऐसी सावधानी तो काम क्रोध को बदल देगी। आली पतंग मृगमीन गज एक एक रस आंच, तुलसी तिनकी कौन गति जिनको व्यापे पांच। पतंग रूप में जल मरता है, भौंरा सुगंध में जल मरता है, हाथी स्पर्श में कागज की घास पत्तों की हथिनी के स्पर्श में जल खड्डे में फंस मरता है। एक एक विकार जीवों का जीव ले लेते हैं, तो जो पांचों विकारों में सुकृति के बहाने गिरता रहेगा तो उसका क्या हाल होगा। सुकृति का मतलब है थारी हां में मारी हां, विकारों के हां में मेरी हां नहीं। तू अपमान कराता है, वाह, देहाध्यास मिटाने के लिए मान देता है, वाह। नजर उस पर हो, नजर अगर ईश्वर पर है तो इन विकारों को ज्यादा दिन जगह नहीं मिलेगी। नजर विकारों पर है, आवश्यकता विकारों की लगती है तो भगवान में मन नहीं लगता। आवश्यकता भगवान में की लगती है तो फिर विकारों में मन नहीं लगेगा। और जो सावधानी बरती और सुकृति दी तो मन में राग द्वेष मिटने लगेगा, मन में शांति का संचार होगा। जो शांति आई त्यों सामर्थ्य आ जाएगा, जो सामर्थ्य आएगा त्यों विकारों पर आपका कंट्रोल। तो एक होता है इंद्रियगत ज्ञान, दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान, तीसरा होता है वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान ये आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है। बीच में एक और रोल आता है, इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान के बीच में मन होता है। मन अगर इंद्रियों के पक्ष में आता है और बुद्धि को खींचता है तो पतन के रास्ते जाते हैं, और मन अगर बुद्धिगत ज्ञान के तरफ आता और इंद्रियों को संयम करता है तो उत्थान होता है। आंख ने दिखाया रूप आसक्ति हुई खींचे, मन सहमत हुआ, बुद्धि ने निर्णय किया उसको ऐसे फंसाओ, इसे ऐसे लव मैरिज कर लो, ये कर लो, तो पतन के रास्ते आए। आंख ने दिखाया भेल पूरी, मन ने कहा ले लो खा लो, अभी दूध या चाय पी के आए, एक घंटा भी नहीं हुआ, दो घंटा भी नहीं हुआ, और भेलपुरी खाया तो कोड़ के दाग हो जाएंगे, सफेद दाग हो जाएंगे। बुद्धि का उपयोग किया तो मन बुद्धि के सहमत हो गया तो संयम आ गया। अगर मन ने बुद्धि को अपने पक्ष में खींच लिया और खाने लग गए तो पतन है। तो बुद्धि को बलवान करने के लिए बुद्धिदाता के विषय में विचार और बुद्धिदाता के हां में हां करा दो, इसमें अभ्यास की जरूरत है। तो जब हम साधन भजन के अभ्यास की जगह पे बैठे तो आसन का भी एक महत्व होता है। ध्यान और संध्या दोनों पर्यायवाचक है, एक ही धातु से उनकी उत्पत्ति हुई, ध्यान और संध्या। संध्या उसे कहते हैं कि जिस जो क्रियाकलाप करने से भगवान की याद आए। प्राणायाम करो, जप करो, सुमरण करो, भगवान की याद आए। तो ध्यान में क्या होता है, भगवान की स्मृति, भगवान की याद। त्रिकाल संध्या इसीलिए करवाई जाती थी और करते थे लोग कि सुबह की संध्या में प्राणायाम, जप, आचमन, तर्पण आदि जो मुद्राएं आदि, ये स्वास्थ्य तन के स्वास्थ्य और मन को मन के स्वास्थ्य की रक्षा कर। फिर सुबह से दोपहर तक कहीं इधर उधर मन भटक गया या तन भटक गया, फिर संध्या करके स्वस्थ हो गए, फिर शाम को संध्या करके स्वस्थ हो गए। अभी आधुनिक संध्या करो, भले अर्घ्य देने की व्यवस्था नहीं हो रही है तो चलेगा, प्राणायाम करो, श्वासोश्वास को देखो। ये जो काम क्या हाथ पैरों ने किया, मन ने सोचा, उसको देखने वाला वास्तविक ज्ञान है। बुद्धि के निर्णय बदले उसको देखने वाला वास्तविक सोहम है। मन के संकल्प विकल्प को देखने वाला साक्षी चैतन्य है। ओम आनंद, ओम शांति, ओम ओम। थोड़ा गोता मारा। अगर रोग और बीमारी आती है उस समय भी लंबा श्वास लिया, हरी ओम का जितना लंबा हो सके, फिर उतनी देर शांत रहे। बीमारी मुझे नहीं, मैं सावधान हूँ। बीमारी शरीर को है, हाथ को है, पैर को है, मुझे नहीं है। बस सावधानी बरती, बीमारी की जड़ें उखड़ जाएगी, आत्मशक्ति का संचार होगा। भय है, चिंता है, शोक है, प्रॉब्लम है, सुबह उठो, ना धोके पूर्व अभिमुख हो जाओ, 10-5-15 ऊर्जा प्राणायाम करो, फिर दीर्घ प्रणव का जप करो। भय आया है, मन में आया है, मैं सावधान हूँ। शोक और चिंता आई है तो मन में है, मैं सावधान हूँ। तू जो भी करेगा हमारे नूतन स्थिति के लिए उत्तम ही होगा। हमें हमारी भलाई का पता नहीं है, बच्चे को अपनी भलाई का पता नहीं, माँ उसे रगड़ती है, नाक पोंछती, दबोचती, देर सबेर मानेंगे, मानेंगे तभी सुखी होंगे। ये जो असावधानी है ना, विवलता मारू धारू था है। ये सासू बहू के झगड़े का कारण यही है, बाप बेटे के झगड़े का कारण यही है, समाज की अशांति का कारण यही है, असावधानी। सब अपने अधिकार की रक्षा करेंगे और सामने वाले चाहे कुछ भी हो, होना ये चाहिए कि अपने कर्तव्य में डटे और सामने वाले के अधिकार की रक्षा करें, आप महान हो जाएंगे। अपना कर्तव्य पालेंगे, आपको विवेक वैराग्य बढ़ जाएगा, वैराग्य बढ़ेगा। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने को सोचेंगे, आपको अपने अधिकार की आसक्ति मिट जाएगी। हो गई सावधानी, आप सफल हो जाएंगे, सफल धनवान हो जाएंगे। आजकल सफल दरिद्र मिलते हैं, रुपए पैसे में तो सफल, लेकिन हृदय से दरिद्र। नौकरी धंधा पेशे में तो सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर से दरिद्र है। जरा सा मनमाना नहीं हुआ तो अशांति, जरा सा विकार को पोषण नहीं मिला, अहम को पोषण नहीं मिला तो अशांति, दुख। तुम कितने छोटे हो जाते हो, जरा सा किसी नौकर ने सलाम नहीं मारा तो अशांति, जरा किसी ने तुम्हारी हाँ में हाँ न भरी तो अशांति, जरा ऐसा हो गया तो अशांति, जरा नोटिस आ गया तो अशांति, जरा ये हो गया तो अशांति। तुम कितने तिनखे की नाई अपने को बहा रहे हो। तुम अचल से मिलो, आत्मा अचल है, परमात्मा अचल है, बस उसके साथ आप सावधानी बरत के संबंध अपना सुमरण कराइए। ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने को मैं कभी नहीं कहता तुमको कि ईश्वर के साथ संबंध जोड़ लो। संबंध वहां जोड़ा जाता है जहां नहीं हो। ईश्वर के साथ तो तुम्हारा पक्का शाश्वत संबंध है, ईश्वर के साथ तुम्हारा शाश्वत संबंध है, और शरीर के साथ, संसार के साथ माना हुआ संबंध है। मैं मोहन भाई, मैं जयंत भाई, नाम सुना और मान लिया ये मेरा मकान है, मन की मान्यता है, लेकिन ये मेरा भगवान है, मन की मान्यता नहीं। भगवान तो मेरा है ही है। जैसे तरंग का और पानी का शाश्वत संबंध है, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा का शाश्वत संबंध है। केवल सावधानी रखे कि उस संबंध को, उस संबंध की विस्मृति न हो, अथवा उस संबंध से विपरीत संबंध न बना ले। मकान के साथ, घर के साथ। एक बूढ़ा आया किसी महात्मा के पास, महात्मा ने कहा भगवान का स्मरण करो, भगवान के रास्ते चलो। अब बुढ़ापा है, बोले भगवान के रास्ते तो चले, लेकिन कुटुंबी हमको बड़ा स्नेह करते हैं, उनको छोड़कर आश्रम में कैसे रहूं महाराज। महात्मा ने कहा क्या स्नेह करते हैं, महीना दो महीना अगर पत्नी बीमार हो जाए और ठीक होने की उम्मीद नहीं है, तो पति सोचेगा कि जल्दी इसका कुछ ठिकाना पड़ जाए तो मैं दूसरी लाऊं अथवा इसकी सेवा से बच जाऊं। पति कमाता नहीं और बीमार हो गया है तो पत्नी सोचेगी कि भगवान ठीक कर दे या तो इसका कुछ कर दे। ससुर ससरा भी बीमार हो गए तो बहू और बेटे ऐसे ही सोचते हैं। बहरे को चिल्ला चिल्ला कर महाराज ने बताया, लेकिन बहरे को ये बात गले नहीं उतर रही थी। महाराज जानते थे, जैसे अपन लोग युक्ति लिख देते ऋषि प्रसाद में, बहरापन मिटाने की युक्ति है आज से 4 महीना पहले की मैगजीन में, बहरापन मिटाना हो, कान के रोगों की बातें लिखी, ऐसी कोई बूटी बूटी की बात बाबा जी जानते थे। बाबा जी ने कहा लिख दो, लो ये हम तुमको देते हैं, कान में डाल देना, तुम सुनने लग जाओगे, लेकिन घर वालों को मत बताना कि मैं सुन रहा हूं, फिर देखो वो कितना प्यार करते तुमसे। तुम बहरे खां हो, बहरे हो, इसीलिए तुम समझते हो कि बड़ा हमको आदर करते हैं, लेकिन ये बूटी का उपयोग करना, तुम्हारे कान ठीक हो जाए, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको बताना नहीं, फिर देखना। उनका कान ठीक हो गया, लेकिन बहरे जैसा स्वांग रखा उन्होंने। ए बहू पानी ला, बहू पानी लाई, पानी का गिलास दिया और बहू बड़बड़ाई और उसकी मश्करी उड़ाते हुए कि पानी लाओ, फलाना लाओ, बस बढ़े हैं बढ़े। वहां तो सिर खपा दिया, क्यों रे डोकरा, ऐसे करके बहू ने मजाक में ठेकड़ी उड़ाते मश्करी करते हुए कहा, और डोकरा समझता था कि ये मेरा आदर कर रहे, हंस के दे रहे हैं, लेकिन अब समझा कि हंसती तो है लेकिन हंसते हंसते क्या बोल रही अब उसको समझ में आया। पति के तरफ देखा कि ये तो छाती पे ही बैठे दिन भर। उसने कहा क्या पता ये लोकरा कब जाएगा तो हम खुल के जिएंगे। तो लोकरे की जो पत्नी थी बोले भी सुनता नहीं तो सिर खपा देता है उसको, फिर भी हम आराम से बोल तो नहीं सकते, बोल तो रहे, अगर ये सुनता रहता और जीता रहता तो हमारी क्या बुरी हालत होती। डॉक्टर ने देख लिया कि पत्नी बड़ा प्रेम करती है, पुत्र बड़ा प्रेम करता है, बहू बड़ा प्रेम करती है, ये तो मेरा धोखा उड़ाते, मेरी मश्करी करते। ऐसे व्यापारी अथवा सेल्समैन ग्राहक का आदर करता है और नहीं उसकी जेब खाली करने की वो टेक्निक करता है। ग्राहक समझता है कि व्यापारी बड़ा आदर कर रहा है, जी फेंटा पीजिए, ये पीजिए, आप कैसे हैं, ठीक है, ये कहां से आए, ये वो, ये सारा बोलचाल उसकी नजर होती है कि माल खरीदे पैसे कमाओ। जैसे व्यापारी की नजर ग्राहक के पर्स पे होती है, पुजारी की नजर वो दक्षिणा रखने वाले पर होती है, ऐसे ही पत्नी की नजर पति के धन और स्वास्थ्य सुख देने के काम पर, पत्नी की नजर पति के उस पर होती है, पति की नजर उस पर, ही सारा संसार एक दूसरे को उल्लू बनाकर सुखी होने के चक्कर में है। दोस्त दोस्त को भी उल्लू बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध, ऐसा करते करते जिंदगियां पूरी हो गई, कोई सुखी देखा नहीं। आपसे मिल अकेलापन आपको खटकता है, दुख की बात है, अकेलापन खटकता है, यार दोस्तार चाहिए, लेकिन वो यार दोस्तार पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, और अभी भी तुमसे उसको सुख मिलेगा तो रहेगा, और वो मरने वाले यार दोस्तार। अकेलापन खटकता है तो असली यार का स्मरण कीजिए। इधर उधर मन आकर्षित होता है तो वो हार्ड मास के शरीर में आकर्षित होता है, हार्ड मास का शरीर प्यारा लग रहा है, वो कितना प्यारा होगा, और वो मेरा आत्मा है। बस सावधान होकर स्मरण करिए, साधन बन जाएगा। सुकृति दीजिए और सावधान होइए, बस। भले 200 माला करने वाले करते मुबारक है, नंगे पैर यात्रा करते हैं करते हैं उनको मुबारक है, तीर्थ व्रत उपवास मक्का मदीना जाते उन्हें वो मुबारक है। तुम तो अंतर्यामी परमात्मा में जाओ, जहां जाने के बाद फिर कहीं जाना नहीं पड़ता। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वो साहब सद सदा हजूर है, अंधा उसे दूर जानता है। तुलसीदास ने कहा घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। वो घट में है साक्षी वास्तविक ज्ञान, उसकी शरण जाओ। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावे न भारतः, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तुम सर्व भाव से उस अंतर्यामी ईश्वर की शरण जाओ, श्री कृष्ण कह रहे हैं। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावे न भारतः, तत्प्रसादात परम शांति। आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये छोटी शांतियां हैं, ये तो आती जाती रहती बिचारी, लेकिन परम शांति एक बार मिलने के बाद फिर जाती नहीं, ऐसी परम शांति तुम पालोगे। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतः, शरीर से जो कुछ कर्म करते उस अंतर्यामी की प्रसन्नता के लिए करो, विकार को पोषने के लिए नहीं, अहंकार को पोषने के लिए नहीं, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम करो, वो तुम्हारी सच्ची सेवा हो जाएगी। फलाना भाई, फलाना भाई, फलाना भाई, ऐसा करके जो लोग तुम्हारे से काम लेना चाहते या करना चाहते, तो आप अंदर सावधान रहो कि ये शरीर का नाम लिवा कर हम सेवा कर रहे हैं, कि शरीर में छुपे हुए परमात्मा अथवा गुरु को साक्षी रखकर हम सेवा कर रहे हैं। केवल सावधानी करो, आपकी सेवा में चार चांद लग जाएगा। उस स्वभाव बदल जाएगा, तो छड़ापन स्वभाव में से हट जाएगा, टांटिया खींच प्रोग्राम हट जाएगा। जो खुशामत खोरों के अथवा वाभई वाह के लिए सेवा करते हैं, वो आपस में लड़ते रहते, झगड़ते रहते, कुत्तों की नाई, बड़े तोछड़े हो जाते हैं। जो वाहवाही के लिए सेवा करते हैं उनका स्वभाव बड़ा तोछड़ा हो जाता है, गंदा हो जाता है। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए जो सेवा करते हैं उनका स्वभाव बड़ा मधुर हो जाता है। तमेव शरणम गच्छ, इस श्लोक को खाली आप स्वीकार कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। इन दो सूत्रों को स्वीकार कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। सावधानी और सुकृति, बस सावधानी और सुकृति, कल्याण हो जाएगा। हमारी ये हालत है कि बुद्धू हलवाई के बेटे जैसी। बुद्धू हलवाई का बेटा काशी में पढ़ने गया, साल भर के बाद उसका काशी का प्रिंसिपल आया गांव में। बुद्धू हलवाई पूछते, मेरा बेटा खाता पीता है, मनी ऑर्डर छुड़वाता है, कपड़े वपड़े अच्छे उनको भेजे थे मिल गए, पहनता करता है। बोले, कपड़े भी पहनता है, खाता भी है, पीता भी है और मनी ऑर्डर भी छुड़वाता है, सब करता है। खाली दो बात की कमी है। बोले, बस आखिर तो मेरा बेटा है ना, उसने पीठ ठोकी अपनी, मेरा बेटा है ना। दो ही कमी है। कौन सी दो कमी? बोले, अपनी उसको अक्ल नहीं और हमारी बात मानता नहीं। बाकी रहा भी क्या, अपनी अक्ल नहीं और हमारी बात, आचार्यों की बात, शिक्षक की बात मानता नहीं। ऐसी मुक्त होने की हमारे मन को अक्ल नहीं है, शास्त्र माना भगवान की और संतों की बात मानता नहीं। संतों के पास आकर भी हम अपने मन की बात मनवाने की जो दृष्टता करते हैं, अथवा मन की आदत के अनुसार सेवा मिलती है, अथवा मन के अनुसार काम मिलता है और मन के अहम को पोषण होता है, फांका पोषा जाता है तो बड़ा उत्साह से काम होता है, और देखते फांके को, अहंकार को पोषण नहीं मिलता है तो सेवा बेवाधारी रह जाती। मैं ये सेवा नहीं करूंगा वो करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा मैं वो करूंगा। मन चाहा, मन चाहा करोगे तो पुष्ट हो जाओगे, तुम्हारे अहम का पोषण होगा। ईश्वर और गुरु और शास्त्र को अस्वीकृति हो जाएगी। शास्त्र ईश्वर और गुरु को स्वीकृति कर दो और अहम की अस्वीकृति कर दो, कल्याण बन जाएगा। हम जब गुरु के वहां 7 साल जब इधर उधर गए यात्रा वत्रा, तो कभी कभार जानबूझ के ऐसी जगह पे जाते कि अपमान हो जाए, फिर देखे कैसा होता है। एक बार दिशा में रात्रि को हम निकले, अनजानी जगह में गए, नदी के किनारे इधर उधर, तो कहीं दारू की भट्टी चल रही थी और कोई शराबी लोग शराब पी रहे थे। हाय बाबा इधर आओ, एक दो गाली सुना के बुलाया उसने। उस समय ये सत्संग हमने नहीं पढ़ा था शास्त्र, लेकिन भगवान की, गुरुदेव की कृपा थी, अंदर में स्वीकृति थी कि देखो जो भगवान की मर्जी होती वही होता है। उन्होंने बुलाया, हम गए तो ठाकेड़ा था वो लड़का, 25-30 साल का होगा, दूसरा उसका साथी था, दोनों नशे में थे, धारिया था हाथ में, वो थोर काटने का किसान लोग, उसने उठा के धारिया रख दिया मेरे कंधे पर, बस जरा सा आधा इंच भी झटका मारे तो गला डैमेज हो जाए। बोले, खेचू गड़ू कापी ना खू बाबा, तो थोड़ा एकांत में भजन करते थे हम, शांत रहे। उसने दो गाली सुनाए, हम शांत रहे, गला खींच दू खेचू, मैं कह जो तेरी मर्जी, तो वो समझा तेरी मर्जी मेरे को बोलते हैं, कि मैं भीतर से उसकी गहराई में जो भगवान है उसको लक्ष्य करके बोला जो तेरी मर्जी, तो उसकी मर्जी तो हमेशा कल्याणकारी होती। उसके हाथ में से धारियां गिर पड़ा और वो मेरे पैरों पे गिर पड़ा। मैं क्या, देख तेरी मर्जी कैसी। बस तेरी मर्जी, शत्रु भी कह दे गाली दूं तेरे को, हाँ तेरी मर्जी, अंदर से समझो कि शत्रु की गहराई में जो है तुम उसको लक्ष्य कर दो, शत्रु के बाप की ताकत नहीं तुम्हारा बिगाड़ सके, तुम सुकृति दे दो, तेरी मर्जी पूर्ण हो। भगवान की मर्जी अगर पूर्ण करने लग गए तो भगवान पूर्ण है, पूर्ण तो पूर्ण ही चाहेगा। जो जुआरी है वो दूसरे को जुआरी बनाता है, जो शराबी है दूसरे को शराबी बनाता है, जो भंगेड़ी दूसरे को भंगेड़ी बनाता है, इसे भगवान ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, तो उसकी मर्जी पूर्ण होने दो, तुम्हारे बाप का जाता क्या है। हम सुकृति नहीं देते, अपनी मर्जी अड़ाते हैं, तभी परेशान होते, तेरी मर्जी पूर्ण हो। अपना नया कोई संकल्प न करे, अपना नया कोई पकड़ न करे, ईश्वर की मर्जी पूर्ण हो तो ईश्वर आपको ईश्वर बना देगा, ब्रह्म आपको ब्रह्म बना देगा, क्योंकि वो उसका तुम सनातन अंश हो। बेवकूफी ये होती है कि ईश्वर को भी बोलते कि मेरी मर्जी से करो, हे भगवान बेटा हो जाए, हे भगवान बेटा हो जाए, और इतने साल के अंदर हो जाए और ऐसा हो जाए, मानो उसको कोई अकल ही नहीं है। हे भगवान मेरे, मैं जाऊं और मेरे केस में फायदा हो जाए, जज की बुद्धि बदल दे, ऐसा कर दे, माना वो तो कुछ जानता ही नहीं, तुम सिखाओ उसको, जज की बुद्धि बदल दे, तू ये कर दे, तू वो कर दे, तो तू भगवान के पास गया कि नौकर के पास गया रे, ये असावधानी है। हे भगवान जरा ऐसा हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए जरा, अरे वो जो करता है ठीक है, उसकी मौजब मौसम ऐसा है वैसा है, तू ऐसा कर दे वैसा नहीं, तेरी मर्जी पूर्ण हो, मौसम आपको परेशान नहीं करेगा। आप स्वीकृति कर दो, कोई दो गालियां देता है ना, हाँ हाँ गालियां देकर तू अपमान कराकर मेरा अहंकार मिटाता है, तेरी मर्जी पूर्ण हो, तुम्हारी साधना हो जाएगी यार। बहुत गर्मी हो रही है, हाय रे गर्मी हो रही है, तो गर्मी सताएगी, गर्मी हो रही है, गर्मी जिसको बारिश का मजा लेना उसको गर्मी भी सहनी पड़ती है, और बारिश के लिए गर्मी भी जरूरी है, सर्दी पचाने के लिए भी गर्मी जरूरी है, और गर्मी पचाने के लिए सर्दी जरूरी है, अपमान पचाने के लिए मान पचाने के लिए अपमान जरूरी है, जीवन को पचाने के लिए मृत्यु जरूरी है। वाह, जो जरूरी है सब तूने किया, तेरी मर्जी पूर्ण हो, बस इतना ही तो मंत्र है, और कोई बड़ा नहीं है, और सीक्रेट भी नहीं है बाबा। आनंद ही आनंद है, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी, जब आशिक मस्त प्रभु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। ध्यान भजन के समय ध्यान भजन करें, और व्यवहार में सुकृति और सावधानी, व्यवहार पूरा भजन हो जाएगा तो फिर भजन में भी बरकत आएगी। दूसरा, जब बैठे तो धरती को धन्यवाद दे के, हे धरती माँ तूने सारे, तेरे को भगवान ने धारण किया है, माँ तू हमें धारण कर, हमें शांति और भक्ति में मदद रूप। जो सनातन धर्म की प्रक्रिया को जानते हैं वे जानते हैं कि घर का भी देवता होता है, भूमि का देवता होता है, घर का देवता होता है, कमरे कमरे का सूक्ष्म देवता होता है। उनका अभिवादन करके कमरे में रहते हो तो आपके दैविक विचार बढ़ाने में मदद करते हैं, अज्ञात विघ्नों को वो हटाते हैं और अज्ञात अनुकूलताओं को वो प्रेरित करते हैं। इसलिए भारत के लोग वास्तव पूजन करते, भूमि पूजन करते, वास्तव पूजन करते, गृह देवता भ्यो नमः, ग्राम्य देवता भ्यो नमः करते हैं। तो ग्राम्य देवता होता है, भूमि देवता होता है, ग्रह का देवता होता है, उन ग्रह के देव में, गांव के देव में, भूमि के देव में जो चम चम चमक रहा चैतन्य, वही आत्मदेव तुम्हारे अंतःकरण में है। तो उन ग्राम्य देवों को, गृह देवों को, भूमि देवों को भी आत्मभाव से देखो तो वो सदा के लिए तुम्हारे अनुकूल ही हो जाएंगे। यहाँ जहाँ आप बैठे ना, यहाँ दारू की भट्टियां चलती थी, एक कोतर थे ऐसे सब, और मिलिट्री वाले आते थे दारू देना महाराज, कि भाई अभी नहीं है, बोले क्या हम अगली बार आए थे इधर ही पिया था तुम लोग, ऐसा हमारे आदमियों को डांटते थे। बाद में उनको पता चला कि दारू नहीं मिलता है, यहाँ आश्रम है। मैं क्या दारू नहीं मिलता है ऐसा मत कहो, यहाँ दारू मिलता है लेकिन दिल की प्यालियों में बढ़ता है। मैंने इन्हीं आंखों से देखा, कभी पुलिस की लॉरियां आती है एक एक दो दो, और वो दारू छानने वाले 30-30 लोग थे नदी में, इधर कहीं गाड़ जाते थे, यहाँ यहाँ सब, ये तो तगारे भर भर के मिट्टियां और बुलडोजर चलाकर साधकों ने अपने मिलके जरा ठीक किया, नहीं तो ऐसे ही थे सारे, खाइयां थी। नारायण 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 नारायण, ये जो बिल्डिंग थी वो भी एक खाई थी, यहाँ भी खाई थी, इधर भी एक खाई थी, यहाँ बैठे वहां थोड़ा टेक रहा था, जैसे वो बड़े बड़े भांगे देखते ऐसे ही था सब। ये नीम बीम भी खाई में थी जो पीछे लग रहा है। ये सत्संग हॉल ये सब बनाया पुराण कर करके भर भर के। एक बार तो ऐसा पूरा गया था वो चंदीराम की कुटिया तक पानी। अब बार बार रेडियो, छोटा सा रेडियो को हिलाया था, पॉकेट रेडियो हमने खोला, साबरमती नापुर झड़पी वधी रहा छे, 22 फुट नी सपाटी छे, 30 फुट नी ही शक्यता छे। फिर 2-5 मिनट में हवे 22.5 फुट नी सपाटी पानी फरी वड़ा छे, नीचाण वाला स्थलों खाली करी जावा खास विनंती छे। अब 22.5 फुट हो सपाटी, 22.5 फुट पानी के भराओ वो चंदीराम की कुटिया के नजीक। फिर हमने कहा देखो देखो, तो उसके अंदर से उसने जो प्रेरणा किया था, हमने जरा पानी में पैर डाल दिया कि माता जी यही है, वो लोटा भर के क्या अब इससे नहीं बढ़ो। अब वो बोल दे 30 फुट बढ़ेगा, और यहाँ 22.5 फुट के बाद 22-23 फुट भी नहीं हुआ साबरमती का पानी। अब हम ठान ले के हमने साबरमती का पूर उतार दिया तो ये बात भी नहीं, वो भी उसी ने प्रेरणा की, तेरी मर्जी पूरा, हम लोटा भर के या पैर डाल के हमको क्या बात है। तुम उसकी हाँ में हाँ कह दो तो ये प्रकृति तो उसकी चेरी है, वो तुम्हारी चेरी हो जाएगी। तुम उसके साथ एक हो जाओ, बस बड़ा आराम है, बड़ी मौज ही मौज है। हे बाबा हम आए, ठीक है आए, उठा के धारिया रख दिया, न लेना न देना, सारी मुझे दुआ खेचू खेचू, तेरी मर्जी पूरा हो। अभी देखो मेरा गला डैमेज नहीं है, जिंदा हूं। गुफा में सांप घुस जाते थे, सांप के रूप में तू आया है, चलो फिर जरा उसको निकालने के लिए। गुफा में वो आ जाता है नीचे से गटर की मोरी से, जाने में वो भूल जाता है। एक आध घंटा कसरत किया आपस में दौड़े इधर उधर, फिर कभी बाहर बैठा था चलते चलते वॉक लेते लेते वो सांप के ऊपर पैर आ गया। फिर वो सांप था या दूसरा था, लेकिन था तो काला, दोनों उन्होंने काटा नहीं। ईश्वर की मर्जी हमें जिलाने की तो सांप क्यों काटेगा, तेरी मर्जी पूरन हो। अगर सांप के कटान से ही मौत है तो हम कितना भी छुप कर बैठे तो भी, अभी भी शांति कुटिया में रहते वहां कई सांप आते हैं। सूरत की शांति कुटिया में कमरे में कई बार सांप होते हैं, इस बार भी थे, और अभी बंद करके आए चारों तरफ से, फिर भी अंदर सांप होते, कहीं से छेद है, आते रहते। अगर सांप के डंश के द्वारा मरना होगा तो हम कितना भी एयर टाइट मकान में रहे तभी भी हो सकता है, वहां भी आ जाएगा। नहीं मरना है तो साथ में आके चले जाते रहते। उसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने घर में सांप रखो, असावधान हो जाओ, नहीं, भले सावधानी बरतो लेकिन भीतर से सच्ची सावधानी भी बरतो कि तेरी मर्जी पूर्ण हो। सांप के रूप में भी तू है, मित्र के रूप में भी तू है, पिता के रूप में भी तू है, माता के रूप में भी तू है। बोले पिता के रूप में भी भगवान है, तो वो भगवान बोलता है सत्संग में मत जाओ, तो फिर हम सत्संग में जाए कि नहीं जाए, उसकी मर्जी पूर्ण करे कि नहीं करे। एक बहू ने रामसुखदास से पूछा कि हमारे ससरे, ससरे में भी तो ब्रह्म है, ससरे में भी तो भगवान है, क्या है? तो ससरा कहता है कथा में मत जाओ। तो हम कथा में आए कि नहीं आए? अगर कथा में नहीं आते तो मन पवित्र नहीं रहता, सत्संग नहीं मिलता है तो मन संसार में जाता है। अगर कथा में आते तो ससरा रूपी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होता है। तो ससरा रूपी भगवान नहीं रोकता है, ससरा रूपी मोह रोकता है। जयराम जी की, ससरा रूपी ईगो रोकता है, पिता रूपी भगवान नहीं रोकता है, पिता रूपी ईगो रोकता है। तो पिता के रूप में जो ईगो है वो ना बोलता है, ईश्वर सत्संग में जाने को ना कभी नहीं बोलता। ये जो मोक्ष कुटिया तुम देख रहे हो वह पहली कुटिया वही बनाई थी। तो एक ट्रक ईंटों की आई तो मेरे भाई को, भाई ने माँ को बढ़ाया चढ़ाया कि देखो 7 साल चला गया, एक का एक भाई है, अब घर में ही रहे, साथ में ही रहे, यहाँ क्या तकलीफ है, जंगल में जाकर कुटिया, उनका कोई भगत है, हाँ बोल दिया, वो बना रहे हैं, जाओ तुम चलो समझाओ जरा। तो माँ को ले आया और माँ बोलती है, तुम बोलते हो ना भूलो भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूलसो नहीं, माता की आज्ञा तो तुम मानते हो, तो मैं तुमको आज्ञा करती हूँ कि ईंटें वापस कर दो और घर अपने भाई के साथ रहो। मैं क्या, ये माँ आज्ञा नहीं करती है, माँ को भाई ने जरा भिड़ा दिया है, वो अविद्या और माँ का मुंह आज्ञा करता है, इसलिए ये बात माँ की नहीं है। ऐसा करके उसको समझा बुझा के, और तो भोली भाली तो है, ताली वाली दे के अपना खुश कर दिया। अभी वो इधर रहती तो समझती कि इधर जिंदगी, अगर बंगले में रहती तो खटिया पे मर जाती। तो माँ की आज्ञा कैसी है, मोह युक्त है, बाप की आज्ञा कैसी है मोह। अगर तुमने सुना कि सब में भगवान है और भगवान की मर्जी पूर्ण हो, तो पत्नी कहेगी चलो पिक्चर में, मेरे में भी तो भगवान है, मेरी बात मान लो। शराबी कहेगा मेरे में भी भगवान है, पी लो प्याली। जुआनी कहेगा मेरे में भी भगवान है, जरा खेल लो मेरे साथ, चौपर चौरस ताश खेल लो। नहीं, सब में भगवान है तो ऐसा मेरा अंतर्यामी भगवान है। हजारों जुआरी खेल रहे हैं, चलो खेलने दो उनको, हम उसी के साथ खेलते हैं। ऐसा करके अपने अंतर्मुख होना है, ऐसा नहीं कि निगुरे लोगों की हां में हां करके अपनी साधना बिगाड़ना है, मोह में आए हुए कुटुंबियों की हां में हां करके अपने को खपा देना है। उस ईश्वर की हां में हां करो, और ईश्वर की हां में हां तो अंतरात्मा है। आप जो नहीं चाहते वो हो रहा है, समझो आप अपमान नहीं चाहते हो रहा है, तो उसके हां में हां करो, अपमान का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ऐसा खाने को मिले, ऐसा रहने को मिले, और वो नहीं हो रहा है, तो चलो उसकी जैसी मर्जी। ऐसा करके आत्म संतोष करके आत्म सुख में जाना है। ऐसा नहीं कि जुआरियों के साथ चल दिया, गंजेड़ियों के साथ चल दिया, फिल्म में चल दिया। तुम किसी को मत बताना, मैं बिल्कुल प्राइवेट बात बोलता हूँ। जिसको माताजी करके भी लाखों लोग जानते मानते, नारायण की माँ, वो जब फेरे फिर के आ गए तो उसके भाइयों ने उसको भिड़ा दिया कि तो साधु हो जाएगा, तुम जरा इनको फंसाए रखना, इनको संसार फंसाए नहीं बोला होगा, इनको जरा ऐसे। फिर मेरी माँ ने और पड़ोसियों ने उसको बराबर भिड़ा दिया कि देखो कहीं साधु न हो जाए। तो शादी होने के बाद तो एक ही कमरे में दोनों को भर देते हैं, ऐसा उन्होंने किया। तो हम तो अलग रहने लगे बाहर ओसरी में खटिया अपनी। तो उनको और चिंता हुई, तो फिर कभी कभी चलो ठीक है तुम अलग रहते हो, ठीक है वो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई ने मेरे को बहुत कहा है, एक बार हमारे को पिक्चर में ले चलो ना। बहुत बार उसने कहा, मैं कि अच्छा चलो भाई देवी। तो उसने तो शादी की साड़ी पहनी, महारानी जैसी लगी, हमारा तो लहंगा जब्बा चपरासी जैसे। चलते चलते हम वो समझ के पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, हमने हाँ भी बोला, चलो तैयार हो गई फटाफट, 3:00 से 9:00 तो 5 बजे एकदम तैयार, 5:15 बजे चल पटावाला के साथ सेठानी जा रही है ऐसा लगता। ऐसे चलते चलते फिर पिक्चर की जगह और सत्संग की जगह दोनों चौराहे से अलग होती थी, हमने सत्संग की जगह पे पहुंचा दिया, महिलाओं के डिपार्टमेंट में भेज लिया, मैं कहा यहाँ पिक्चर हमारी चल, तू उधर बैठ हम इधर बैठते। फिर ऐसे करके उसको मोड़ दिया धीरे धीरे। तो ये ईश्वर की मर्जी हुई, अगर उसके साथ हम पिक्चर में जाते तो उसकी कामना की मर्जी होती, विकारों की मर्जी होती। विकारों की मर्जी ना पूर्ण हो, ईश्वर की मर्जी पूर्ण हो बस। अगर उसकी इंद्रियों और उसके भाई के मन की बात में हम आ जाते तो हमारा क्या हाल होता है। जयराम जी, जैसे 2-5 बच्चे उनके भाइयों को है, ऐसे इनकी बहन को 2-5 बच्चे 6 होते और पलटन होती, और जमाई खोजते रहते और बहू खोजते रहते, और पूरा नहीं होता है, लाइन लगाते रहते, कोई आसाराम बापू के पास खोजते रहते, पूरा नहीं होता है, धंधे में बरकत नहीं हो। आशीष कहे बाबा ना तो दुखी है, चोरा पड़ता नहीं है, चोरी का बीमार नहीं होता है, बाबा दया कर गिड़ गिड़ करते रहते और क्या करते। विकारों की मर्जी पूरी नहीं, अहंकार की मर्जी पूरी नहीं, वासना वाले दोस्तों की मर्जी पूरी नहीं, लेकिन उनकी गहराई में जो मेरा परमात्मा उसकी मर्जी पूर्ण हो, बस इतना ही तो करना है। लेकिन दिखता इतना है, इसमें सब कुछ आ जाता है भांजे, सब कुछ आ जाता है। कई लोग ध्यान करते ना तो ध्यान में भी ऐसा लगना चाहिए ध्यान, अरे ऐसा लगना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इसमें तो फिर होगा ही नहीं। ध्यान में बैठो, तेरी मर्जी पूर्ण हो, तेरी मर्जी पूर्ण हो, तेरी मर्जी पूर्ण हो प्रभु तेरी जय। शुरू हो गया, बस चिंतन हो गया, आराम हो गया। ध्यान करता कि कुश्ती करता है तू? वो गिल्ली डंडा खेलते नहीं, गिल्ली डंडा तो पहले डंडा मार के गिल्ली को थोड़ा ऊपर उठाते, फिर दूसरा जोर से कस के मारते तो गगनगामी होती। ऐसे तुम ध्यान में बैठो तो पहले अपने मन को उठाओ। श्वासोश्वास चल रहा है, नासाग्र दृष्टि रखिए। पहले तो धरती पर बैठते उसका आदर करिए, धरती का देवता, भूमि देवता। हमारे साधन भजन में सहयोग करें। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, धरती का आदर किया, इष्ट का स्मरण किया, गुरु का स्मरण किया, फिर ध्यान में बैठे, ये समझो गिल्ली को थोड़ा ऊपर उठाया, फिर अजापा जाप किया, अथवा जो जो रीत, कई रीतें बताई जाती, जो रीत अपने को सेट होती, लग गए ध्यान में। नंगे पैर, भूखे पेट, ज्यादा प्राणायाम और ज्यादा ध्यान करने से खुश्की चढ़ जाएगा। और जिनको सपन दोष की तकलीफ है, ऐसे लोग ज्यादा प्राणायाम करें, ज्यादा उपवास करें अथवा ज्यादा ध्यान करें तो खुश्की चढ़ने का भय रहता है। करोड़ों लोग मेरे सत्संग में आ चुके होंगे, मेरे से परिचित हैं करोड़ों लोग, और लाखों अपने शिष्य हैं। हम इतना सावधान रहता हूं कि कोई खतरा पैदा नहीं हुआ योग के कारण, साधन के कारण। अगर सावधानी नहीं बरते तो योग में भूल हो तो रोग हो जाएगा, ज्ञान में भूल हो जाएगी तो नास्तिकता आ जाएगी, भक्ति में भूल हो जाएगी तो बेवकूफी बन जाएगी। इसलिए सावधानी खूब चाहिए, सुकृति और सावधानी। और सावधानी इसकी भी रखनी है कि मैं सावधान हूं, ये भी अंदर नहीं घुसना चाहिए, इसकी भी सावधानी। मैं तो बड़ा सावधान रहता हूं, तो फिर थोड़ा असावधान हो जा, मैं नमक नहीं खाता हूं, जरा खा ले। सावधान होने का भी अहंकार ना आए, ऐसी सावधानी। बोले मेरे को तो सावधान होने का अहंकार भी नहीं होता है, तो ये भी एक अहंकार है। नारायण नारायण नारायण। चलो आप फिर सुकृति में चलते और सावधान होंगे, उसके सुमरण के सिवा और कोई सुमरण आए तो अग्रम तग्रम स्वाहा। उसकी स्मृति के सिवाय, उसके जप ध्यान के सिवा और कोई बात आए, अग्रम तग्रम स्वाहा, इधर उधर की बात स्वाहा, मेरा तेरा ये हो स्वाहा। ओ शुद्ध हवा में करना चाहिए, सूर्योदय हो उस समय। ओ योग्य परमात्मा ही है, इष्ट देव है, गुरु तत्व ही है। मारा वाला तारो जय हो, भूमि देवता आत्मदेव, मंगल ही मंगल।